उपस्थित महानुभाव उत्तम प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, आज की बैठक में संत वाणी के कुछ वाक्य आए हैं जिनकी व्याख्या मुझे करनी है। पहला वाक्य है, अनित्य जीवन में आकृति से भाव की उत्पत्ति होती है और दिव्य जीवन में भाव से आकृति की उत्पत्ति होती है। बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। इसमें रहस्य यह है कि जब हम लोग शरीरों के साथ तादात्म्य जोड़कर रहते हैं, अर्थात मैं और यह शरीर एक है, यह शरीर है तो मैं हूँ, शरीर है तो मैं बोल रही हूँ, शरीर है तो मैं जी रही हूँ, ऐसा लगता है। जब शरीरों के साथ अपने को मिला करके हम लोग रहते हैं तो अन्य आकृतियों को देख करके भाव पैदा होता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं, ये मेरे मित्र हैं। जिस आकृति को हमने पिता माना उसकी आकृति को देख करके अपने भीतर आदर का भाव पैदा हुआ, और जिस आकृति को मैंने पुत्र माना उसको देख करके हृदय में वात्सल्य भाव आया, और जिस आकृति को मैंने दुश्मन माना उसको देखकर भीतर आक्रोश पैदा हो गया, जिस आकृति को मैंने खतरनाक माना उसको देख करके भीतर में भय पैदा हो गया। समझ में आता है? तो अनित्य जीवन में आकृति से भाव की उत्पत्ति होती है, आकृति के अनुरूप भाव बन जाता है, और दिव्य जीवन में भाव से आकृति की उत्पत्ति होती है। जो दिव्य जीवन है जिसमें लौकिकता का लेश नहीं है, उसमें भौतिक तत्व का प्रवेश नहीं है, ऐसा जो दिव्य जीवन है उसमें भाव से आकृति बनती है। ज्ञान पंथ के साधक और प्रेम पंथ के साधक जो कि देह भाव से असंग हो चुके हैं, देह भाव जिनका छूट गया है, उनका दिव्य जीवन से संबंध हो गया है, उस दिव्य जीवन में भाव से आकृति पैदा हो जाती है। जिस भक्त का जैसा भाव होता है उस भाव के अनुरूप भगवान की आकृति बन जाती है। वृंदावन में एक संत रहते थे, अब तो बहुत दिनों से उनको देखा नहीं है, पागल बाबा कहलाते हैं वे। पहले वे कलकत्ते में जज थे। उनकी कथा ऐसी है कि उनकी कचहरी में एक मुकदमा था, मुकदमा एक भगवत विश्वासी गृहस्थ पर था। वे गृहस्थ बड़े भगवत अनुरागी थे, सज्जन देसी थे, भगत भी कहलाते थे। उन्होंने किसी महाजन से कभी रुपए लिए होंगे कर्जा, और समय पर वे कर्जा चुका दिए, उनको रसीद भी मिल गई। इस बीच में उस सेठ के मन में बेईमानी आ गई। उसने कहा, भगत जी मुझको एक गिलास पानी पिला दीजिए। तो भगत जी जब तक पानी लेने गए तब तक सेठ ने अपनी दी हुई रसीद चुरा ली। भगत जी बेचारे जल पिलाए और घर चले आए, रसीद की उनको याद भी नहीं रही। सेठ ने उस रसीद को छिपा लिया, और कुछ समय जब बीता तो भगत जी पर उसने मुकदमा कर दिया कि तुम्हारे पास मेरा रुपया बाकी है। भगत जी ने कहा कि सेठ जी रुपये तो हम दे आए थे। सेठ ने माना नहीं, उसने कहा कि रुपये तुम दे गए थे तो रसीद लाओ। रसीद इनके पास थी नहीं, याद ही नहीं था, और कोई सबूत इनके पास था ही नहीं कि रुपया दे दिया है। मुकदमा चलने लगा, पेशी हुई। उसी मामले में जब जज साहब को फैसला देना था तो उन्होंने भगत जी से पूछा कि भाई मैं फैसला देने जा रहा हूँ, तो तुम जो कह रहे हो कि मैंने रुपए दे दिए हैं, तो तुम्हारा कोई गवाह भी है, किसी को मालूम है, कोई कह सकेगा कि हाँ तुमने रुपए दे दिए हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा गवाह तो है। एक तारीख दे दी गई कि उस दिन तुम अपने गवाह को लेकर आना। उन्होंने अपने गवाह का नाम लिखवा दिया, रघुनाथ जी, पता लिखवा दिया, कनक भवन अयोध्या, और सब लोग चले गए। निश्चित तारीख पर जब इनका नंबर आया तो कोर्ट में पुकारा गया, अरे भाई रघुनाथ जी गवाह यहाँ आए हैं क्या? भगत जी बेचारे चुपचाप बैठे थे, इनको तो कोई बात ही सोचनी नहीं थी। दूर से एक आदमी पगड़ी बांधे हुए, मामूली कपड़े पहने हुए, लंबा हाथ उठाकर पुकारता हुआ भीड़ के बीच में से आ गया। जी हाँ मैं हाजिर हूँ, क्या बात है? उनसे पूछा गया कि इन भगत जी का ऐसा ऐसा केस है, इन्होंने आपको गवाह बताया है, तो आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। सबूत दे सकते हैं? हाँ दे सकता हूँ। क्या सबूत है बताइए। तो गवाह ने कहा कि आप इस सेठ को अपने पास रखिए और इनके घर पर आदमी भेज दीजिए, इनके अमुक अलमारी में एक बही रखी है, अमुक नंबर के पन्ने में रसीद कटी रखी है, आप मंगवा लीजिए, अगर ये मिल जाए तो यही सबूत मानिए। कहकर गवाह रघुनाथ जी चले गए। गवाह का काम पूरा हो गया। सेठ के यहाँ जाकर तलाशी ली गई, अलमारी में से बही निकली और उस बही में से रसीद भी निकली। भगत जी छूट गए, उनका मामला खत्म हो गया। जज साहब सोचने लगे कि यह गवाह है, कौन हो सकता है कि जो सेठ के घर में किस अलमारी में किस बही में किस पन्ने में रसीद रखी है, ऐसी पक्की गवाही कौन दे सकता है? तो उन्होंने भगत जी को बुलाया और कहा कि आपका मुकदमा खत्म हो गया, आप जीत गए, आपका गवाह पक्का निकला, प्रमाणित हो गया कि आपने रुपए दे दिए हैं, ये सब बातें खत्म हो गईं। लेकिन अब मेरी एक बात सुनिए और मुझे बताइए कि आपका यह गवाह कौन है? भगत जी हंसने लगे, कहने लगे कि भाई वह गवाह तो मेरा प्राण आधार है, मेरे जीवन का आधार है, मैं और क्या बताऊं? मैंने उनका नाम और पता लिखवाया है, रघुनाथ जी, कनक भवन, अयोध्या। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया कि वह कौन है, कौन हो सकता है? उनके अतिरिक्त मेरा है कोई संसार में? भगत जी अपने आनंद में मस्त, अपने रघुनाथ जी के आनंद में मस्त। अब जज साहब अपने घर गए तो उसी समय से उनके सिर में एक बात चक्कर काटने लगी कि अच्छा भगवान मेरी कचहरी में आए और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। उनके भीतर बड़ी लगन लग गई कि यह तो बड़े दुख की बात है, भगवान मेरे कोर्ट में आए और मैं कुर्सी पर बैठा रहा, मैंने प्रणाम भी नहीं किया, अरे मैंने उनको पकड़ क्यों नहीं लिया? प्रभु आए, इस बात से वे बड़े आह्लादित हो गए, मुग्ध हो गए और मन में निश्चय किया कि जिस कुर्सी पर बैठकर भगवान छूट गए उस कुर्सी पर फिर नहीं बैठूंगा। और वे नहीं बैठे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, वृंदावन आ गए। स्वामी जी महाराज के साथ अनेक बार मैंने उनके दर्शन किए, उनके ध्यान में क्या रहा होगा इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट मालूम होती थी कि वे सब समय इसी चिंतन में रहते थे कि पता नहीं रघुनाथ जी किस वेश में आ जाएं। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के दरवाजे पर खड़े हुए कई बार उनके दर्शन हुए हैं, उनका भाव यही रहता था कि न जाने किस वेश में भगवान इस मंदिर में जा रहे होंगे, इसलिए जितने लोग उस दरवाजे से पार होते उन सब की चरण धूलि चौकट में से पूछ पूछ कर अपने सिर में देह में लगाते रहते थे, भीतर नहीं जाते थे। भीतर जाने से उनको मतलब क्या, ये तो यही सोचते रहते थे कि विविध रूपों में जा रहे हैं लोग, न जाने इसी में कौन से भगवान होंगे, तो उनकी चरण धूलि उनको प्रिय थी, लगाते रहते थे शरीर में। स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है कि दिव्य जीवन में भाव से आकृति की उत्पत्ति होती है, दिव्य जीवन था उस भगत का जिसके गवाह बने भगवान, उस भक्त के दिल में बड़ा जोरदार विश्वास था कि मेरे सब कुछ रघुनाथ जी हैं, माता पिता भी रघुनाथ जी हैं, भाई बंधु भी रघुनाथ जी हैं, सब विश्वास एक विश्वास में, सब संबंध एक संबंध में सिमट करके रघुनाथ जी में समाहित हो गए थे। तो माता पिता रघुनाथ जी हैं, भाई बंधु रघुनाथ जी हैं, अब दुनिया के गवाह की जरूरत हुई तो गवाह भी रघुनाथ जी को छोड़ के और कौन होगा, वह भी एक संबंध ही है ना। मेरे पक्ष का आत्मीय मेरा गवाह है तो उसमें उसके भीतर में जीवन की दिव्यता में रघुनाथ जी के प्रति जो अपनेपन का भाव था और उसने कोर्ट में लिखवा दिया गवाह का यह नाम है यह पता है, तो यह सब उसके भीतर भाव में था, उसी भाव के अनुरूप आकृति बन गई। उस आकृति को उसी अकेले भक्त ने देखा हो तो नहीं, सबने देखा। इस प्रकार भाव के अनुरूप आकृति बनती है और यह दोनों तरफ से होता है, भक्त के हृदय में भगवान के प्रति जो भाव है भगवान उसी भाव के अनुसार अपनी आकृति बना लेते हैं, ऐसा भी है, और भक्त के भीतर अपने संबंध में भगवान के प्रति जो भाव है भक्त का भी वह भाव शरीर बन जाता है, भाव शरीर कहलाता है। किसी ने भगवान को अपना बालक माना तो भगवान की माता, यह हारमास का बना हुआ शरीर जो भौतिक तत्व का है सो नहीं, जिन भक्तों ने अपने को भगवान की माता का भाव रखा तो भौतिक शरीर से उनका संबंध छूट जाता है और भाव शरीर में मातृत्व लेकर वे भगवान को लाड लड़ाते हैं और भगवान उस प्यार को वात्सल्य से ओत प्रोत प्यार को लेकर के खूब आनंदित होते हैं। तो भाव से आकृति बन जाती है, यह दोनों तरफ से होता है, भक्त के भाव के अनुसार भगवान बन जाते हैं और भक्त ने अपना जो भाव रखा परमात्मा के प्रति तो उसका यह स्थूल शरीर से संग छूट जाता है और प्रेम भाव से एक भाव शरीर उसका बन जाता है जो कि परमात्मा को लाड़ लड़ाता है। आपने सुना होगा गोपी चरित्र में कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब भगवान ने बंशी बजाई और बंशी की ध्वनि में सखियों का गोपियों का नाम ले ले करके पुकारा तो सब दौड़ पड़ी, कोई रसोई बनाते बनाते छोड़कर भागी, कोई बच्चे को दूध पिलाते पिलाते छोड़कर भागी, कोई घर का काम करते हुए छोड़कर भागी, कोई उल्टा सीधा श्रृंगार किए हुए भागी, इस तरह से बहुत सी गोपियां चली गईं और कुछ ऐसी भी थी कि उनके शरीरधारी घर वालों ने जाने नहीं दिया। एक गोपिका के बारे में ऐसा लिखा है कि उसके पति ने बहुत डांटा और कहा कि अब इस समय मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं मान रही थी तो घर में उसे बंद कर दिया गया, तो उसका भौतिक शरीर तो वही रह गया और वह गोपिका भाव शरीर से पहुंच गई राजमंडली में। और ऐसा सुना जाता है कि शरद पूर्णिमा की वह रात्रि, जिस रात्रि को भगवान ने रास लीला की थी, वह रात्रि 6 महीने की हुई थी। केवल 10-12 घंटे की रात नहीं थी वो, बहुत लंबी वह रात्रि हुई थी। और उतने दिनों तक प्रेम के आदान प्रदान में वह गोपिका अपनी उसी सखी रूप में भगवान के रास में सम्मिलित रही। नृत्य भी किया उसने, रास भी किया, रस प्रेमास्पद को दिया भी, प्रेमास्पद से रस लिया भी। तो स्थूल शरीर जो उसका था वह गोप वाले घर में बंद रहा और भाव शरीर से वह भगवान के पास पहुंच गई। तो भाव से आकृति बन जाती है, यह दोनों ही तरफ से सत्य है। भक्त की भावना के अनुसार भगवान आकृति बना लेते हैं और भगवान के प्रति अपनी भावना के अनुसार अपना भाव शरीर बन जाता है। बहुत बढ़िया प्रसंग है। ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग है। बिहार प्रांत के छपरा जिले में एक सज्जन थे, शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर का काम करते थे, उनका नाम था भगवान प्रसाद। एक बार उनके इंस्पेक्टर जनरल इंस्पेक्शन में आ रहे थे स्कूल निरीक्षण करने के लिए, और डिप्टी इंस्पेक्टर भगवान प्रसाद जो थे वे भगवान के भक्त थे। अपने घर में प्रातःकाल पूजा में बैठे तो उनको प्रेम समाधि लग गई, उन्हें याद ही नहीं रहा कि समय पर ड्यूटी पर जाना है। शरीर से उनका संबंध टूट गया था, अब आए कैसे, स्टेशन पहुंचे कैसे। बड़े जनरल इंस्पेक्टर को उन्होंने रिसीव नहीं किया, स्कूल तक पहुंचाने नहीं गए, निरीक्षण नहीं करवाया, वे तो समाधि में बैठ गए। लेकिन उनकी जगह पर एकदम उन्हीं के समान बनकर भगवान काम करने आ गए, किसी को पता नहीं चला। जनरल इंस्पेक्टर का नाम था जगत नारायण लाल और डिप्टी इंस्पेक्टर का नाम था भगवान प्रसाद। ये दोनों मित्र भी थे और दोनों भगवान के भक्त भी थे। तो उस दिन जनरल इंस्पेक्टर जब आए तो डिप्टी इंस्पेक्टर को उपस्थित देखा और दोनों ने मिलकर के काम सब किया। छपरा से ट्रेन में बैठकर मांझी आए, वहाँ स्कूल में गए, इंस्पेक्शन हो गया, सब काम हो गया। जब वे हेडक्वार्टर में पहुंचे छपरा स्टेशन पर, तो वहाँ पहुंचते ही डिप्टी इंस्पेक्टर बने हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर पूजा में मस्त जो डिप्टी इंस्पेक्टर साहब थे, उनकी समाधि जब टूटी तो वे घबरा कर उठे, भागे भागे स्टेशन आए और हाथ जोड़कर खड़े थे कि मैं बड़े साहब से क्षमा मांगूंगा, मैं तो भूल ही गया, बहुत तकलीफ हुई होगी, कैसे इंस्पेक्शन हुआ होगा, कैसे काम हुआ होगा, बड़े चिंतित थे। ट्रेन पर से जगत नारायण लाल उतरे, इधर डिप्टी साहब खड़े हैं हाथ जोड़कर, कह रहे हैं कि मुझसे बड़ी चूक हो गई, मैं आपके साथ गया नहीं, आपके साथ मैं काम नहीं करा सका, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। जगत नारायण लाल खड़े खड़े इनको बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि भाई बात क्या है। उनका चपरासी भगवान प्रसाद से कहने लगा कि हुजूर आप क्या कह रहे हैं, आप गए तो थे हमारे साहब के साथ, आप अभी तो संगी संग आ रहे हैं, ट्रेन से उतरे हैं, किस लिए हाथ जोड़ रहे हैं, क्या चूक हुई है आपसे, आप तो अभी हमारे साथ ही आए हैं। अब ये दोनों भगवत भक्त समझ गए कि क्या मामला है। फिर जगत नारायण लाल चले गए अपने दफ्तर और भगवान प्रसाद रोते रोते घर चले आए और भगवान के पास बैठकर अपने ठाकुर जी से खूब दुख सुनाया। हे सरकार, बिहार की भोजपुरी भाषा में सरकार करने की पद्धति है। तो कहने लगे, हे सरकार, आपको बड़ा कष्ट हुआ, मैं चूक गया सरकार, आपको काम करना पड़ा, ऐसी नौकरी करके क्या करूंगा। अत्यंत अधीर होकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। वे बड़े ऊंचे भक्त हुए। अयोध्या जी में रूप कला जी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर उनका स्टैच्यू भी बना हुआ है। बहुत उच्च कोटि के भक्त माने जाते हैं वे। भगवान के साकेत के पार्षदों में से अष्ट सखियां जो अलग अलग कार्य के लिए भगवान के साथ निरंतर रहती हैं, किशोर जी के साथ निरंतर रहती हैं, उनमें से एक है रूप कला जी। रूप कला जी की बहुत सी रचनाएं भी हैं और बड़ी महिमा है उनकी। इस उदाहरण से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि भाव से आकृति का निर्माण हो गया दिव्य जीवन में। क्योंकि वह दिव्य है इसलिए उसमें सातत्व है, नाश नहीं होता उसका, और भक्त की भावना के अनुरूप उसकी प्रीति का आदर करने में भगवान अपना रूप बना लेते हैं। क्योंकि डिप्टी इंस्पेक्टर भगवान प्रसाद पूजा के समय प्रभु के प्रेम में समाधि में डूब गए, अर्थात अपने प्रेमास्पद से एक हो गए, तो उनके प्रेमास्पद ने यह रूप बनाया और उनका लौकिक काम किया। इसका मतलब यह नहीं है कि उस काम का बड़ा महत्व है, अपनी जगह पर वो ठीक है और हम लोगों को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन इसमें विशेष अर्थ यह है कि भक्त जब अहम शून्य हो करके उस दिव्यता में डूब गया, भौतिकता उसकी खत्म हो गई, तब भगवान प्रसाद की संज्ञा जो थी वह प्रभु प्रेम के रूप में बदल गई। समझ में आता है? वह संज्ञा जो थी एक अलग यूनिट, वह प्रभु प्रेम में बदल गई। तो जिस समय वे अहम शून्य होकर प्रभु के प्रेम में खो गए, उस समय भगवान को बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया अपने भक्त की जगह पर उसका काम करने में। आकृति बन गई, ऐसी बन गई कि किसी ने पहचाना ही नहीं। चपरासी तो उनको समझाता ही रहा कि साहब आपको क्या हुआ है, आप साथ ही तो थे, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, आपने सब काम करा ही दिया है। ऐसा होता है। रूप कला जी का शरीर अब नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति भावना, प्रभु के प्रति उनका प्रेम विद्यमान है, उसका नाश कभी नहीं होगा। अब दूसरा सूत्र मिला है व्याख्या के लिए, वो है प्रीति का समूह व्यक्ति का अस्तित्व है। व्यक्ति किसी न किसी की प्रीति है। व्यक्ति का अस्तित्व है किसी न किसी की प्रीति का समूह। इसका अर्थ जैसा मेरी समझ में आता है वो ये है कि जिज्ञासु का अस्तित्व मात्र जिज्ञासा हो जाता है, ऐसे ही प्रेमी जन का अस्तित्व ही मात्र प्रभु प्रेम रह जाता है। और इसको थोड़ा उलट के भी कह दें, ऐसा कह दें कि जैसे कोई धन का लोभी लोभ से प्रेरित होकर धन के लिए जुटा हुआ हो तो उसका अस्तित्व धन का लोभ रह गया। जैसे कोई विषय किसी विषय से प्रेरित होकर के विषय वस्तु के लिए व्यग्र हुआ हो तो उसका अस्तित्व ही विषय शक्ति बन गया। और वैसे ही प्रभु का प्रेमी या सत्य का शोधक अथवा परम तत्व के लिए योग की चेष्टा में जो लगा हुआ हो तो जिसकी प्रीति जिससे होती है वह प्रीति का समूह ही उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है और उसमें दूसरा कुछ नहीं रहता। तीसरा सूत्र अविवेक के संबंध में है। अविवेक का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व जिसका है उसमें अविवेक नहीं है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र अस्तित्व अविवेक का नहीं होता, यह तो हम जब विवेक का अनादर करते हैं तो विवेक का अनादर करने से अविवेक पूर्वक काम करने लग जाते हैं। तो जब तक हम अविवेक पूर्वक प्रवृत्ति को सुखद मान करके उसको अपने में रहने देते हैं तब तक अविवेक रहता है, और जिस समय सचेत होकर विवेक का आदर करने लग जाते हैं तो हमारे त्याग करने मात्र से अविवेक का नाश हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा महाराज जी ने, कहीं कहीं लिखाया भी है इस तरह से, कि बुराई का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, भलाई का स्वतंत्र अस्तित्व तो है। इसलिए जब व्यक्ति अविवेक पूर्वक बुराई करने में लग जाता है उस समय भी उसके अहम में से भलाई का नाश नहीं होता, और बहुत ही अनर्थकारी काम में जुटे हुए व्यक्तियों के मुख से भी आप बहुत अच्छे अच्छे वचन सुनते होंगे। जो अविवेक पूर्वक बुराई करने में लग गया है वह भी जब आपस में बैठ करके बातचीत करने लग जाता है तो कहता है, अरे भैया संसार नाशवान है, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, ऐसी बातें लोग करते हैं। भलाई का नाश कभी नहीं होता है, सच्चाई का नाश कभी नहीं होता है, क्योंकि उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा विलक्षण जीव है भगवान की धरती पर कि उस भलाई के मूल रूप से विद्यमान रहते हुए भी वो बुराई करने पर तुल जाता है। तो जानबूझकर जब वह भलाई की जो बीज रूप से विद्यमान है उस पर ध्यान नहीं देता, विवेक का प्रकाश जो उसमें विद्यमान है उसका अनादर करता है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात को जानते हुए भी किसी भय से भयभीत होकर अथवा किसी लोभ से प्रेरित होकर न करने वाला काम भी करने लग जाता है, जो नहीं करना चाहिए सो भी करने लग जाता है, तो जिस काल में वह ऐसा करने लग जाता है उस काल में बुराई पैदा होती है, और जिस काल में जो नहीं करना चाहिए उसे करना छोड़ देता है तो उसी समय बुराई समूल नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भलाई को छोड़ देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, बुराई में फंस जाती हूँ, तो भलाई का समूल नाश नहीं हो जाता, वह विद्यमान रहती है और दबी रहती है। बुराई का त्याग मनुष्य जब कर लेता है तब उसका समूल नाश हो जाता है। इसी आधार पर महाराज जी ने ऐसा भी कहा कि आपने किसी मनुष्य को ऐसा नहीं देखा होगा जो सर्वांश में बुरा हो, लेकिन ऐसे मनुष्य आपने देखे होंगे जो सर्वांश में भले हो। ऐसा होता है, सब प्रकार की बुराइयों का त्याग करके सर्वांश में व्यक्ति निर्मल हो सकता है, लेकिन जब सब प्रकार की भलाई का नाश कर डाले ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है। तीसरा सूत्र है, समस्त वस्तुएं अमरत्व की ओर दौड़ रही हैं, क्योंकि परिवर्तन के ज्ञान में ही अपरिवर्त्य की लालसा विद्यमान है। यह बहुत बढ़िया सूत्र है। समस्त वस्तुएं अमरत्व की ओर दौड़ रही हैं। एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, नदियों का प्रवाह समुद्र की ओर है, जिसमें से उनकी उत्पत्ति हुई उसी में पुनः प्रवेश। समुद्र के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी, सूर्य की किरणों से उसमें जलवाष्प बना, वे बादल बनकर आकाश में गए, वर्षा होकर जल होकर फिर वापस गिरे, तो जहाँ भी कहीं गिरे वहीं से सिमट सिमट करके समुद्र से कितनी भी दूरी उनकी क्यों न हो, उनकी दौड़ किसकी ओर है, समुद्र की ओर। तो समस्त वस्तुएं अपने उद्गम की ओर दौड़ रही। इसलिए इस परिवर्तनशील जगत को अगर कोई आँखों वाला है जो देख सके, तो इस परिवर्तनशील जगत का संदेशा भी हम लोगों के लिए परमात्मा की ओर है, और वस्तुओं की नश्वरता वस्तुओं में परिवर्तनशीलता, बहुतों को, बहुत से साधकों को अनंत की ओर आगे बढ़ा देता है, क्योंकि इनसे हम लोगों को संदेशा मिलता है। नाशवान की नश्वरता को देख करके अविनाशी की ओर भागने का संदेशा मिलता है। और स्वामी जी महाराज एक बार किसी को कुछ कह रहे थे, अभी टेप में हम लोग एक दिन सुन रहे थे, तो खूब गला भरा हुआ था और कह रहे थे कि भैया यह संसार कह रहा है कि अरे मुझ में कुछ नहीं है, यह माने दृश्य जगत का दृश्य आपसे कह रहा है, आप सुनते हो क्यों नहीं, अब उसकी बात समझते हो क्यों नहीं। वह कह रहा है अरे भैया मुझ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं तुम्हारा होकर नहीं रह सकता, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो मेरे भाई, मेरे पास क्यों चिपके हो। तो हर नष्ट होने वाली वस्तु हर सचेत व्यक्ति को अपनी नश्वरता का संदेशा देकर अविनाशी को पकड़ने के लिए प्रोत्साहन देती रहती है। एक समय ऐसी बातचीत हो रही थी कि वहाँ से कोई समाचार तो आता ही नहीं है, कब जाना है, कब क्या करना है, तो कैसे आदमी जाने, कैसे तैयार हो। तो एक संत ने कहा कि कितनी चिट्ठियां आ गई तुम्हारे पास, तुम पढ़ते ही नहीं हो तो क्या किया जाए, वहाँ से कितनी चिट्ठियां आ गई, तुम पढ़ते कहाँ हो। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि महाराज हमको तो पता नहीं चला कहाँ चिट्ठी आई। तो संत ने कहा कि अरे भाई दांत जो गिर कर झड़ गए, एक दांत टूट गया तो एक चिट्ठी आ गई कि नहीं, चिट्ठी आ गई कि मैं जा रहा हूँ इसलिए सब साथी हमारे चले जाएंगे, तो चिट्ठी तो आती है, तुम पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाए, संदेशा तो आया, वहां से समाचार आता ही रहता है। अनेक प्रकार की घटनाएं जो मंगलकारी प्रभु के मंगलमय विधान से हम लोगों के जीवन में होती है, वो हर घटना हम लोगों को उस परम प्रेमास्पद का प्रेम निमंत्रण ही तो है, उनसे रहा कहाँ जाता है, न खुद चैन से रहते हैं न हमको रहने देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ खटपट लगाए रहेंगे, सब समय संदेशा भेजते ही रहते हैं, समाचार आता ही रहता है, बुलावा आता ही रहता है, हर भाई बहन को जगाया ही जाता है, चेतना दी जाती है, कहा जाता है भाई यहाँ कुछ है नहीं, यह तुम्हारा घर नहीं है। संत कबीर ने कहा रहना नहीं देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं है, पहुँचना है अपने घर, इस बात का संदेशा अनेक रूपों में अनेक ढंग से आता ही रहता है। जो जिंदा दिल लोग हैं वे लोग इन्हीं बातों में से संदेशा अपना ले ही लेते हैं, बहुत रहस्य है इस बात में, बहुत रहस्य है। आंखें खोल कर देखने पर इस दृश्य जगत की नश्वरता में भी अविनाशी का संदेशा मिलता है और इस दृश्य जगत की सुंदरता में भी अविनाशी का संदेशा मिलता है, इसकी सुंदरता में भी अविनाशी का संदेशा मिलता है। स्वामी जी महाराज सुनाते थे कि कोई एक सज्जन थे जो किसी रूपवती स्त्री को बड़े गौर से देख रहे थे, वो महिला बहुत समझदार थी, तो उन्होंने कह दिया गैरों की सूरत पर होते हैं शैदा, वो दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। वे सज्जन सत्य के शोधक थे तो उन्होंने भी लिख दिया तुझसे न मतलब न सूरत से तेरी, मुसब्बर की मैं तो कलम देखता हूँ, मुसब्बर की मैं तो कलम देखता हूँ। तो यह जगत के संबंध में जो दार्शनिक विचार है कि वह अव्यक्त ही व्यक्त रूप में फैला है और उसी ने हम लोगों को बनाया और अपने प्रेम के विस्तार के लिए बनाया, अकेले रहा नहीं गया तो हमको बनाया, इसलिए यह जगत जो है यह हम लोगों को परमात्मा से बिछुड़ाने वाला नहीं है, इसकी नश्वरता भी परमात्मा के पास पहुंचने का संदेशा देती है और इसकी सुंदरता भी उनकी ओर आकर्षित करती है। एक ग्रंथ है द हिमालय, हिमालय पर्वत का उसके विविध चित्रों के संग्रह और उसका कुछ विवेचन इसमें दिया गया है फोटोग्राफी के साथ, उसमें मैंने पढ़ा था, आप लोगों को समय समय पर सुनाया करती हूँ मैं। वह एक जापानी युवक फोटोग्राफर है, लेकिन उसने प्राकृतिक सुंदरता को देख करके ऐसा अनुभव किया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ उन सब देखे हुए के भीतर एक अनदेखी शक्ति का आभास मुझे मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह जो अदृश्य सत्ता है वह मुझ में बड़े फोर्स के साथ भर रही है। उस सुंदरता को देख करके मुझको ऐसा लग रहा है कि इस सुंदरता के विस्तार में और इसकी विचित्रता और इसके आकर्षण में कौन प्रकट हो रहा है? वही प्रकट हो रहा है जो सबकी सत्ता के रूप में है। अगर वह नहीं होता तो यह सुंदरता भी नहीं होती। और जैसे यह प्राकृतिक सुंदरता है, यह प्राकृतिक सुंदरता उस अदृश्य शक्ति की अभिव्यक्ति है। अगर यह प्रकृति न होती तो मनुष्य भी नहीं होता, ये पर्वत नहीं होते, यह सुंदरता नहीं होती तो यह मनुष्य भी नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि वह एक ही परम सुंदर अदृश्य सत्ता है जिसकी अभिव्यक्ति में यह प्रकृति भी है और हम भी हैं। ऐसा उस जापानी युवक को महसूस होता है। वह भगवान को खोजने के लिए ऋषि मुनियों की तरह उत्तराखंड में बास करने गया नहीं था, न उसने ध्यान लगाया, न जप किया, न कुछ किया, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता में एक ऐसी भव्यता, एक ऐसी दिव्यता का दर्शन उसने किया कि मुग्ध हो गया। इसलिए मैं दोनों ही तरह से मानती हूँ, संसार की नश्वरता भी मनुष्य को आगे की ओर बढ़ने का संदेशा देती है और संसार की सुंदरता भी उस परम सुंदर की ओर हमें आकर्षित होने की प्रेरणा देती है। बहुत बढ़िया बात है। अब अगला प्रसंग है, प्रेमास्पद प्रेम भाव से हम लोगों को बना करके सृष्टि में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अत्यंत निकट इस प्रतीक्षा में ही रहते हैं कि कौन समय हमारे में से अनित्य का भाव मिटे और नित्य जीवन का भाव जगे। जरा भी देर नहीं लगती है, नित्य जीवन का भाव जगा नहीं कि वे अपने को प्रकट करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। बहुत ही लालसा में भरे सब समय हमारे भीतर बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ विद्यमान और सब समय इस बात के लिए प्रस्तुत कि कब मेरा यह बच्चा नाशवान की ओर से मुख मोड़ करके मुझ दिव्य से मिलने के लिए अभिलाषा करेगा। भाव आपके भीतर जगा नहीं कि उनको थोड़ा सा भी बहाना दे दो, थोड़ा मौका दे दो तो जल्दी से अपनी दिव्यता का प्रकाश करके आपको अपनाने और अपने प्रेम का रस भरने के लिए तैयार रहते हैं। जरा जरा सी देर में दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदलती है, जरा सी देर में देह का भास छूटता है। पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखकर किसी ने देह भास छोड़ दिया, बादलों को आकाश में उमड़ते हुए देखकर किसी ने देह का भास छोड़ दिया, समुद्र की उठती हुई लहरियों को देखकर किसी ने देह का भास छोड़ दिया, किसी बच्चे को माँ के साथ लाड़ दुलार करते हुए देखकर किसी ने देह भास छोड़ दिया। ऐसा अद्भुत अद्भुत प्रसंग है कि मैं क्या बताऊं। सचमुच इस जगत रूप में वे जगतपति ही व्यास है, चारों ओर केवल हमारे अपने अहम के परिवर्तन की देर है, उनके प्रकाशन में देर लगती ही नहीं है। स्नान किए हो कि नहीं, कि रात के गंदे कपड़े में पड़े हो, कि भोजन कर रहे थे, कि मुंह धोया कि नहीं, हाथ में जूठन लगा है कि मुख में जूठन लगा है, इन बातों का कुछ भी असर नहीं होता है। अनित्यता छूटी और नित्य जीवन का भाव आया नहीं कि सृष्टि भी बदली, आकृति भी बदली, जीवन भी बदला। क्या से क्या हो जाता है, इतनी जल्दी हो जाता है। जैसे जैसे इस बात का परिचय मिलता है, वैसे वैसे लगता है कि हाय रे, हम बिचारे कितने दिन बिछुड़ कर बिताए, कितने दिन तुम्हारी याद के बिना खोए, जीवन का रस जाना ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब तक खोए से खोए, अब नहीं खोएंगे। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां अपने लिए हम लोग दोहरा लें। अब लौ नसानी अब नान सिंह, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि नंद सही हूँ। अब हम लोग नहीं चुकेंगे, जीवन की हर घटना में अपने परम प्रेमास्पद का संदेशा पाकर सतत जागृत रहेंगे, दिव्य चिन्मय प्रेम रस पाएंगे। यह भली प्रकार समझ लो कि सच्चे त्याग के बिना सम्मान तथा स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, और सच्चा त्याग आ जाने पर संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। जिस प्रकार मछलियों के उछलने कूदने से जल को खेद नहीं होता, उसी प्रकार संसार की ओर से आने वाले अनेक आक्रमणों से भक्त के हृदय में खेद नहीं होता। यह भली प्रकार समझ लो कि सत्य देखने में कितना ही छोटा हो और असत्य देखने में कितना ही बड़ा हो, किंतु अंत में सत्य की जय होती है, यह सिद्धांत निर्विवाद है।